नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत।
बहुत बहुत धन्यवाद अतहर, और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार।
पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद को बरकरार रखा है। वियतनाम में कल एशियाई ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और इस्तांबुल में अंतिम ओलंपिक क्वालिफाइंग स्पर्धा में अमन सहरावत और दीपक पुनिया से उम्मीदें। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से हो रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। कुलविंदर, मुकाबला बेहद दिलचस्पी की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन शुरुआत इसी मैच से हम करते हैं जो कि आज हो रहा है, जो कि चर्चा तो हमारी बहुत विस्तृत होने वाली है
जी।
आज मोतियों के शहर हैदराबाद में हैदराबाद और लखनऊ के बीच ये जो एक दिलचस्प मैच खेला जा रहा है, आपकी नजर में इसका परिणाम क्या हो सकता है कुलविंदर?
देखिए, दोनों ही शहर जो है बिरयानी के लिए मशहूर है, चाहे हैदराबाद हो चाहे लखनऊ हो।
बिल्कुल,
अब लखनऊ हैदराबाद के घर में गया है, अपने घर में खेल रहे हैं हैदराबाद, और उसका उनको फायदा जरूर मिल रहा है। अभी तक ये देखिए 69 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर, और 12वां ओवर चल रहा है। तो जिस तरह से यहां खेल हुआ है, और मैं एक बात और बताना चाहूंगा हमारे सुनने वालों को कि ये पलटवार सप्ताह है, रेवेंज वीक है। यहां से टीमें जो पिछले मैचेस कभी हारी हैं कभी जीती हैं, उसका अब अंतिम ये दौर में, चौथे दौर में पहुंच चुका है। यहां से प्लेऑफ की टीमें निर्धारित होंगी।
बिल्कुल,
एक बात मैं और बताना चाहता हूं, जब आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था उस वक्त 59 मैच खेले गए थे, टोटल 620 छक्के लगे थे पूरे टूर्नामेंट में। यहां पर आज 57वां मैच है
और
1000वां छक्का लग चुका है।
क्या बात है,
पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। 2022 में 1062 छक्के लगे थे, 74 मैच थे, 74 मैच 2023 में थे 1124 लगे थे, और इस बार मैं समझता हूं कि कम से कम 1200 के आसपास सिक्सर लगे। तो ये बल्लेबाजों का खेल, मैं जो मेरा कहने का मकसद था,
बिल्कुल
गेंदबाजों के लिए नहीं, लेकिन यहां पर एक गेंदबाजों ने बहुत अच्छा किया है। जैसे पैट कमिंस की बात करना चाहूंगा, जब वो मुंबई इंडियन के खिलाफ उन्होंने एक ओवर डाला था, पहली गेंद डॉट रही, रोहित को आउट किया, उसके बाद जो 4 गेंदे सूर्य कुमार यादव को खिलाई थी, चारों की चारों जिस तरह से कान के नजदीक से गई थी, विकेट मेडन ओवर रहा था, वो दिखा दिया कि अगर गेंदबाज में भी दम है तो वो अपना प्रदर्शन अच्छा कर सकता है।
अच्छा, खेल में जो रोमांच पैदा करते हैं वो बल्लेबाज ही करते हैं। T20 की खास बात यही है कि जितने छक्के लगेंगे, जितने चौके लगेंगे, दर्शकों का उत्साह उतना ही बढ़ेगा, और वो मनोबल बढ़ाने के लिए जोरदार तालियों से अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी करते हैं। कुलविंदर, यहां पर एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज का जो मैच है इसमें टॉस कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि लखनऊ पहले बल्लेबाजी ऑप्ट करने का फैसला उसने लिया है, तो ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आज के मैच में?
देखिए, ऐसा है कि लखनऊ को चाहिए था कि वो चेज करता, क्योंकि अब शुरुआत में आप ये मान के चलते हैं कि हम बेफिक्र होकर खेलेंगे, लेकिन ये भूल गए कि वो अपने घर पर खेल रहे हैं, और आज बारिश की संभावना भी थी, ओवरकास्ट था वेदर। शुरुआत में चारों के चारों विकेट तेज गेंदबाजों को मिले हैं, 2 भुवनेश्वर कुमार को, 1 विकेट मिला पैट कमिंस को, और 1 मिला नटराजन को। तो एक संभावना ये भी थी कि शायद बारिश की वजह से मैच खेला ही ना जाए, एक एक अंक बढ़ जाए, तो ये बाकी टीमों के लिए बहुत मुश्किल होती है, चाहे वो डेली कैपिटल है चाहे वो सीएसके है। लेकिन यहां पर टॉस जीतकर पहले जो अगर चेज करती लखनऊ की टीम तो ज्यादा बेहतर रहता, और उनको पता होता कि उनका टारगेट क्या है। यहां पर अब शुरुआती झटके लग चुके हैं, 13 पर पहला विकेट गिरा, 22 पर दूसरा, और पावर प्ले में केवल 27 रन बने थे। कितना दबाव है ये देखिए तेज गेंदबाजों का, और स्पिनर भी आज जो उन्होंने व्यास को खिलाया है वो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वो हसरंगा की अनुपस्थिति में उनको खिलाया गया। तो मैं समझता हूं कि दबाव जो बनाया है हैदराबाद में, इससे उभरना होगा। हालांकि इनके पास खिलाड़ी हैं, इसके अलावा पूरन है, बडानी है, दीपक हुड्डा है, अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं।
अब अंक तालिका पर नजर डालते हैं कुलविंदर, चूंकि अंक तालिका में हालांकि हैदराबाद 4थे स्थान पर मौजूद है, जबकि लखनऊ अभी 6थे स्थान पर है, यानी एक संघर्षपूर्ण स्थिति यहां पर मौजूद है, तो आपकी इस पर टिप्पणी चाहता हूं कि क्या कुछ होने वाला है?
देखिए, अभी भी एक खुला हुआ है, 6 जो टीमें हैं वहां तक ये खेल खुला है, बाद में आरसीबी, पीबी, मुंबई इंडियन और गुजरात सबसे नीचे है, तो ये तो अब प्लेऑफ में जाने के लिए नहीं खेलेंगे, दूसरों का खेल बिगाड़ने के लिए खेलेंगे कि हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। लेकिन ये जो छह टीमें हैं, इन छह टीमों में नेट रन रेट बहुत काम आएगा अंत में जाकर। अगर आप जीतते भी हैं तो कम ओवर्स में आप जीतिए, अगर आप हारते भी हैं तो बिल्कुल पास में पहुंचकर हारिए, तो यहां नेट रन रेट आगे जाके काम आएगा। और आपको एक बात और बता दूं, पिछले तीन सीजन में 14 अंकों वाले भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं,
उम्मीद की किरण अभी जागी।
बिल्कुल, क्योंकि 12-12-12 पे चारों टीमें सीएसके, एसआरएच, डीसी एंड लखनऊ, और ऊपर जो दो टीमें केकेआर और राजस्थान रॉयल्स, वो दोनों लगभग पहुंच चुके हैं।
कुलविंदर, करेंगे इस पर भी, यानी अंक तालिका पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक सवाल और है इसमें से रिलेटेड।
घरेलू सवाल बना के लाए आप,
घरेलू दर्शकों का ये दिमाग है, काम करता रहता है, जब आप सामने होते हैं तो सवाल दिमाग से खुद ब खुद निकलते रहते हैं। एक सवाल ये है कि घरेलू दर्शकों का, हैदराबाद का जिक्र हो रहा है, आपने कहा कि वो मोतियों का शहर, मैंने कहा साथ में ये भी कहा चार मीनार का शहर है और बहुत अच्छी तहजीब का शहर भी है, तो लोकल जो दर्शकों का प्रभाव कितना पड़ेगा अपनी टीम हैदराबाद पर?
देखिए, फर्क तो पड़ता है, लेकिन दूसरी बात ये भी है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सी जो दूसरी अवे टीमें अपने घर छोड़कर यहां आकर खेलती हैं, तो उनको भी अपना होम ग्राउंड लगने लगा है, लेकिन दर्शकों का बहुत फर्क। आप देखिए, आज जो वो ड्रेस पहनते हैं एसआरएच, सारे के सारे दर्शक वही ड्रेस पहनकर मैदान के ऊपर बैठे हैं, तो उसका फायदा तो होता है। और दर्शक एक अच्छी क्रिकेट देखने को आते हैं, केवल चौके छक्के रन बनने पर ही वो खुश नहीं होते, विकेट गिरने पर भी उनको खुशी होती है, उतनी खुशी होती है जितने रन बनने पर होती है, तो घरेलू मैदान का फायदा मिल रहा है। पैट कमिंस बहुत समझदार दिमाग वाले कप्तान है और मैं समझता हूं कि पलड़ा अभी तक उनका भारी है।
बिल्कुल सही कहा, ताजा समाचार मिलने तक एक बार स्कोर हम और बता दें। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 13वें ओवर में 4 विकेट पर 73 रन बना लिए हैं
जी।
और अब कल के मैच की चर्चा करेंगे, धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से कल होने वाला है। कुलविंदर, आने वाले कल में पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा, ये मैच कैसा रहने वाला है?
देखिए, दोनों ही टीमें प्लेऑफ की दौड़ से तो लगभग बाहर है, अगर ये तीनों मैच जीतती भी हैं, ये दोनों टीमें तीनों मैच भी जीतती हैं, तो उसके बाद भी इनके ज्यादा 14 बनेंगे, लेकिन बाकी टीमें बहुत आगे निकल जाएंगी, तो इफ और बट के ऊपर बहुत डिपेंड है। मैं समझता हूं कि धर्मशाला होम ग्राउंड है पंजाब का, तो अच्छे तरीके से वो अच्छा खेल पाएंगे, लेकिन उनमें क्या कि एकजुटता नहीं है, उनकी जो टीम में गेंदबाजी है वो इतनी प्रभावित नहीं कर पा रही है, और बार बार कप्तान बदलने पड़ते हैं, बार बार उनके बल्लेबाज ऊपर नीचे करने पड़ते हैं आरसीबी के, क्योंकि विराट कोहली इस समय आगे चल रहे ऑरेंज कैप में, तो उनका प्रदर्शन पे बहुत निर्भर करता है, आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा।
हालांकि पंजाब पॉइंट टेबल की अगर बात करें तो 8वें स्थान पर मौजूद है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 7वें पायदान पर है, तो प्ले ऑफ की स्थिति में इनकी हार जीत से कोई फर्क पड़ेगा क्या?
देखो, फर्क तो पड़ेगा, अगर आरसीबी सारे के सारे मैच जीती है तो 14 अंक बन जाएगी, जैसे मैंने पहले कहा कि पिछले तीन सीजन में 14 अंकों वाले भी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो और एक बड़े मार्जिन से अगर जीते हैं तो नेट रन रेट पे वो ऊपर हो जाएंगे, तो अब जाकर कुछ फर्क पड़ सकता है।
इससे पहले कल रात खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 20 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 221 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए अभिषेक पोरेल ने 36 गेंदों में 65 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि जैक फ्रेजर मैकगर्ग ने मात्र 20 गेंदों में 50 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स की ओर से आर अश्विन ने 3 विकेट लिए। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने राजस्थान रॉयल्स को 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन पर रोक दिया। राजस्थान रॉयल्स की ओर से कप्तान संजू सैमसन ने 46 गेंदों में 86 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और खलील अहमद ने 2-2 विकेट लिए। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। कुलविंदर, एक बार फिर इस मैच की हम बात करें जो गुजर गया है ना, दिल्ली और राजस्थान के बीच। कल का मैच बेहद रोमांचक रहा, जिसमें जीत दिल्ली कैपिटल्स की हुई, जिसके नतीजे में दिल्ली की प्लेऑफ की उम्मीदें अभी जीवित रही हैं। क्या कहते हैं, दिल्ली क्या प्लेऑफ खेलेगी?
देखिए, दिल्ली प्लेऑफ खेलेगी या नहीं खेलेगी बाद की बात है, अभी हम चर्चा करेंगे कल की अंपायरिंग के बारे में। राजस्थान हारता नहीं था, अगर संजू सैमसन को जिस तरह से आउट दिया गया है, शे होप ने जब वो कैच लपका था तो उनका शू उनके जो एडवर्टाइजमेंट के होते हैं उसके साथ लगा हुआ था, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो हिला नहीं। सवाल इस बात का नहीं, जब आपको ऐसा निर्णय लेना होता है, जब कप्तान खेल रहा है और वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप तुरंत आप फैसला ले लेते हैं कि सब टच नहीं हुआ और आउट है, और अगर वाइड बॉल हो उसके लिए आप 10-10-12 बार एंगल देखते हैं। यहां पर जूम करके देखा जाना चाहिए था कि वो टच हुआ है या नहीं, एक बार देखकर मान लिया गया कि आउट दे दिया गया और उसके बाद वो टीम धीरे धीरे पिछड़ती चलेगी। तो राजस्थान जो कि अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में है और दिल्ली जो कि इस समय जीती है उसके हौसले बड़े हुए।
अच्छा, राजस्थान रॉयल्स हालांकि कल का मैच लूज कर गई, इसके बावजूद वो अभी भी दूसरे पायदान पर है। कुलविंदर
जी,
आईपीएल में राजस्थान से आपको क्या उम्मीदें अभी नजर आती है?
देखिए 2022 में भी वो फाइनल में पहुंचे थे और गुजरात से हारे थे। शुरुआत जब हुई थी 2008 में तब वो चैंपियन बने थे। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान की टीम इस वक्त बहुत बढ़िया चल रही है, सबसे टॉप में चल रही है और नेट रन रेट भी उनका प्लस में चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो प्लेऑफ में तो है और इस बार जीतने की भी उम्मीद कर सकते हैं।
आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने कल के अहम मैच में राजस्थान को हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीद को अभी भी बनाए रखा है। इस पर सुनते ही रिपोर्ट।
दिल्ली अब अंक तालिका में पांचवें स्थान पर आ गई है। दिल्ली ने अब तक 12 में से 6 मैच जीते हैं और 6 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और उसके पास इस समय 12 अंक हैं। राजस्थान को हराकर दिल्ली ने खासकर नंबर 3 और नंबर 4 के मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। अंक तालिका पर नजर डाली जाए तो इस समय 12 अंक पर 4 टीमें मौजूद हैं जिसमें दिल्ली के साथ लखनऊ, हैदराबाद और चेन्नई की टीम है, यानी इन टीमों के बीच प्लेऑफ में पहुंचने की रेस अभी बरकरार है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 11 मैच खेले हैं और वो 12 अंक हासिल करने में सफल रही है। हैदराबाद और लखनऊ के भी 11 मैच में 12 अंक हैं, यानी इन टीमों के पास अभी भी प्लेऑफ में पहुंचने का अवसर मौजूद है। अंक तालिका देखें तो पहले नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स है जिसके अभी 16 अंक हैं और एक मैच जीतने पर वो प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। वहीं दूसरे नंबर पर राजस्थान है, राजस्थान को भी एक मैच और जीतना है, एक मैच जीतने के साथ ही राजस्थान भी प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। इसके बाद नंबर 3 और नंबर 4 के लिए मुकाबला होगा। वर्तमान में नंबर 3 पर चेन्नई सुपर किंग्स और नंबर 4 पर सनराइजर्स हैदराबाद मौजूद हैं। पांचवें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स, छठे पर लखनऊ और सातवें पर बेंगलुरु की टीम इस समय मौजूद है। पंजाब किंग्स 8वें, मुंबई इंडियंस 9वें और आखिरी पायदान पर गुजरात टाइटंस की टीम है। टीमों को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 16 अंक हासिल करने होंगे। ऐसे में लखनऊ, सीएसके, हैदराबाद और दिल्ली की टीम के पास प्लेऑफ में पहुंचने का मौका मौजूद है। बेंगलुरु और पंजाब को अपने सारे मैच जीतने होंगे। बेंगलुरु अपने सभी मैच जीतने के बाद 14 अंक पर ही रहेगी। बता दें कि लीग में सभी टीमों को 14-14 मैच खेलने हैं। स्पर्श सक्सेना स्पोर्ट्स गैन।
टी20 विश्व कप का आगाज 1 जून से होना है। फाइनल मैच 29 जून को खेला जाएगा। टी20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने टीम की घोषणा करने की डेडलाइन 1 मई तक दी थी। ऐसे में 20 टीमों में से 15 ने अपने दलों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके अलावा अब तक 5 टीमों ने अपने दलों का ऐलान नहीं किया है, जिसमें बड़ी टीम श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की थी। वैसे इन टीमों के अलावा बाकी की 15 टीमों ने अपनी टीम की पूरी सूची आईसीसी को सौंप दी है। इस बार मेजबान वेस्टइंडीज और अमेरिका हैं, जहां टी20 वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएंगे। कुलविंदर, टी20 विश्व कप कितना रोमांचक रहने की आपको उम्मीद लगती है?
देखिए, रोमांचक तो होगा, ये क्रिकेट का विश्व कप, लेकिन सबसे बड़ी बात जो टाइमिंग है उसका, टेलीकास्ट का या खेलने का, वो हमारे भारतीय या इस एशिया की तरफ सूट नहीं करेगा। बहुत ज्यादा जो क्रिकेट प्रेमी है वो रात रात भर जाकर मैच देखेंगे और मैं समझता हूँ कि वहां तेज पिचेज हैं वेस्टइंडीज में, ज्यादा मैच वेस्टइंडीज में होने तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। और भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह और मोहम्मद सिराज को जो रखा गया है, मैं समझता हूं कि बहुत सही है। लेकिन यहां एक थोड़ा सा जो मुझे चैन की अगर बात करें, आपने बात छेड़ी है भारतीय दल की, तो उसमें अक्षर पटेल की जगह बनती नहीं थी, क्योंकि रविंद्र जडेजा जब है तो दोनों में से एक ही खेल पाएंगे। इसके अलावा यजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव भी है, तो मैं समझता हूं कि यहां थोड़ा सा किसी बैटर को खिलाना चाहिए था, गायकवाड़ जो कि दूसरे नंबर पर चल रहे 541 रन बनाए।
भारत के अमन सहरावत और दीपक पूनिया कल से इस्तांबुल में शुरू होने वाले अंतिम विश्व कप कुश्ती क्वालिफायर्स में पेरिस ओलंपिक के लिए पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में कोटा हासिल करने का प्रयास करेंगे। इस पर और जानकारी लेते हैं अपनी सहयोगी दीपाली पांडे से।
पहलवानों के पास पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का ये अंतिम मौका होगा। अमन सहरावत से विश्व चैंपियनशिप या बिस्केक में एशियाई क्वालिफायर में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद थी, लेकिन वो इन दोनों अवसरों पर नाकाम रहे। इस्तांबुल में अब भारतीय पहलवानों के लिए करो या मरो जैसी स्थिति बन गई है। यहाँ प्रत्येक वर्ग के फाइनल में पहुँचने वाले दोनों खिलाड़ियों को कोटा मिलेगा। तीसरा कोटा कांस्य पदक के लिए होने वाले मुकाबले में जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ी को मिलेगा। 4 दिवसीय टूर्नामेंट की शुरुआत ग्रीको रोमन शैली से होगी। इसके बाद महिला और फ्री स्टाइल प्रतियोगिताएं होंगी। भारत के किसी भी पुरुष पहलवान ने अभी तक पेरिस ओलंपिक में जगह नहीं बनाई है।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। कुलविंदर, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ आपने विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।